ओम शांति। सभी के दिल का गीत सभी ने दिल ही दिल में गाया। कितना ऊंचा बाबा ने हम सबको बनाया है, अपने से भी ऊंचा। कितनी ऊंची पढ़ाई, कितनी ऊंची पालना हम सबको मिल रही है। बाबा के महावाक्य सुनते ऐसी पालना का अनुभव होता है जैसे बाबा वतन में है, लेकिन वतन में होते हुए भी साकार में हम सबको इतनी श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंची पालना में पालते हुए आगे बढ़ा रहा है। आज की मुरली भी सबको याद होगी, सभी ने एक चित्र अपने सामने खींचा होगा। ज्ञानी तू आत्मा का बहुत सुंदर चित्र बाबा ने खींच करके हम सबके सामने दिया। उस चित्र में आज मैंने अभी अभी एक और दृश्य इमर्ज किया। ताज भी था, तिलक भी था, तख्त भी था, संपत्ति भी थी, लेकिन छत्र के विषय में बाबा ने आज नहीं बोला। हम सबके ऊपर एक एक संगम युगी ब्राह्मण आत्मा के ऊपर बाबा की छत्र छाया है, और छत्र छाया के कोई राजाई तख्त पर बैठा हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर छत्र न हो तो भी शोभा नहीं देता। तो हम सभी संगम योगी स्वराज्य अधिकारी बच्चों पर, राजाओं पर बाबा के याद की छत्र छाया सदा रहती है। कितने प्रकार की हरेक के ऊपर छतरी है, हरेक ने अपने ऊपर किस प्रकार की छतरी रखी है वो हरेक अनुभव कर सकता है, क्योंकि आजकल वैरायटी छतरियों का भी फैशन है। सिर्फ एक कलर की नहीं, अनेक कलर की आती हैं। तो हम सबके ऊपर बाबा के प्यार की, स्नेह की भी छत्र छाया है, बाबा के वरदानों की भी छत्र छाया है। कई बार बाबा कहते हैं अपने ऊपर मस्तक पर बाबा के वरदानों का बृहद हस्त अनुभव करो, चलते फिरते हर कार्य करते ऐसा अनुभव हो कि वतन से बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है और मैं आत्मा उसी छतरी के नीचे चल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ। एक बहुत सुंदर छतरी हम सब के साथ रहती है, जो आत्माएं जितने शुद्ध संकल्पों में रमण करती हैं, शुद्ध संकल्पों की एक बहुत सुंदर छतरी छत्र छाया के रूप में हर एक ब्राह्मण के साथ रहती है। साधारण व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं है। अगर सदा एक शुद्ध संकल्पों में रमण करने का अभ्यास है तो एक बहुत सुंदर ओरा, बहुत सुंदर आभा मंडल आत्मा क्रिएट करती है। जब आप योग अभ्यास करते हैं, हरेक की विधि अपनी अपनी है, लेकिन उसका संपूर्ण आनंद लेने के लिए मुझे एक बहुत सुंदर अनुभव होता है। जब इस शरीर से डिटैच होकर के अपने भ्रकुटी आसन पर आत्मा चमकने लगती है, अशरीरी स्थिति का अनुभव भी होता, ऐसे लगता है शरीर है ही नहीं। और उस आत्मा के चारों ओर जो एक सुंदर आभा मंडल बनता है, वो लाइट का सुंदर शरीर तैयार होता है। अगर उस लाइट के शरीर पर और चमकती हुई मणि पर डायरेक्ट शिव बाबा की किरणें आने लगें, लेजर किरणों की तरह आत्मा उसके नीचे हो और वो किरणें कई कलर्स में अंदर प्रवाहित हो जाएं, विचार करके देखो क्या अनुभव होगा। मैं समझता हूं उस समय सीमा समाप्त हो जाएगी। बहुत समय तक उस एक रस स्थिति में बाबा की लाइट और माइट के नीचे एक चमकती हुई मणि सर्व शक्तियों और सर्व गुणों से भरपूर अपने आप को बिल्कुल न्यारा प्यारा सब संकल्पों को समेटा हुआ कितनी शक्तिशाली स्थिति होगी। हमारी माताएं अभी भट्टी करने के लिए पहले ग्रुप में आ रही हैं, जो आज इस ग्रुप में पहले ग्रुप की माताएं पहुंच गई हैं, हाथ उठाएंगे हैं? अच्छा, काफ़ी आ गए हैं। सभी अभ्यास करना। मधुबन में भी बहुत सुंदर भट्टियां चल रही हैं। ड्रामानुसार इस बार पहली बार बहुत समय के बाद मधुबन में भाई बहनों के ग्रुप्स भट्टियां कर रहे हैं। पहले ग्रुप में जयपुर के भाई बहने आए थे, अभी अहमदाबाद लाइट हाउस के इंडिया कॉलोनी के भाई बहने आए हैं। 250 का ग्रुप है और बहुत सुंदर एकांत शांत तपस्या की भट्टी हैं 250, लेकिन कोई भी मुख का आवाज़ नहीं है, कोई हलचल पता ही नहीं चलता लोग हैं यहाँ। तो कल मैं उनकी भट्टी में क्लास ले रहा था, मुझे टॉपिक तो दी थी बेगमपुर के बादशाह की ब्रह्मा बाबा की समान स्थिति, लेकिन उसके बाद एक डेढ़ घंटा क्लास होने के बाद मुझे कहा एक घंटा और इनसे बैठना है। तो एक बहुत सुंदर चेकिंग का चार्ट जो स्वयं स्वयं आत्मा रियलाइज करे मैं कहां पर हूं, क्योंकि हम सबके सामने तीन चार दर्पण हैं। जैसे दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो चेहरे पर या शरीर के कहीं पर भी किसी भी स्थान पर कोई भी दाग होता है, कुछ भी नीचे ऊपर दिखाई देता है तो उसको ठीक किया जाता है, पता चलता है कि यहाँ ये ठीक नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा की जीवन हम सबके आगे दर्पण है, आईना है। बाबा ने साकार में क्या किया और अव्यक्त होने के बाद क्या कर रहे हैं, हम सभी बाबा के साकार और अव्यक्त पार्ट को 76 वर्षों से देखते और अनुभव कर रहे हैं। कैसे बाबा बच्चों के बीच में रहते, इतनी पालना करते, इतना ज्ञान मंथन करते, इतनी जवाबदारियां संभालते, और नंबर वन कर्मातीत स्टेज को प्राप्त किया, अव्यक्त बन गए। लास्ट दिन तक भी कहा कि मुझे, मैं भी तो पुरुषार्थी हूँ, मैंने भी अभी तक देहाभिमान को नहीं जीता है, लेकिन गुप्त इतना गहरा पुरुषार्थ कैसा होगा जो आत्मा ने वस्त्र उतारे और पता भी नहीं चला, शरीर से डिटैच हो गए। वो स्थिति न्यारे और प्यारे की, सबके बीच में रहते हुए सबको पालना देते हुए नष्टो मोहा और उपराम स्थिति जो ब्रह्मा बाबा ने बनाई, हम सभी भी बाबा को देखते हैं तो पता चलता है कि मैं कहाँ पर हूँ और बाबा क्या थे। इतिहास बताता है कि बाबा ने इतनी सारी जवाबदारियाँ संभाली, इतने बच्चों की पालना की, इतना विरोध सहन किया। मैं समझता हूँ आज तो हम लोगों के आगे कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं, सभी बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब तक बाबा साकार में रहे तब तक लोगों का बहुत विरोध झेलना पड़ा, चाहे वो सन्यासी थे चाहे वो अज्ञानी आत्माएं थी। नहीं समझ के कारण बाबा को बहुत ग्लानी, बहुत गालियां देती थी। कभी कभी बाबा कहता था कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ था मैं, क्या था और क्या हो गया, मुझे कितना लोक सम्मान की दृष्टि से देखते थे, इतना ऊंचा व्यवसाय, इतना अच्छा बिजनेस, इतनी मान प्रतिष्ठा, लेकिन बाबा मिला, बाबा आया और उसके चमत्कार हैं, उसके अपने कार्य चल रहे हैं और बीच में सुनना मुझे पड़ता है मैं फंस गया हूँ। लेकिन बाबा सब कुछ सुनते हुए सबको एक निर्दोष दृष्टि से देखते रहे, किसी पर भी दोष नहीं दखा कि इसके कारण ऐसा हुआ, इस बच्चे ने गलती की इसके कारण बाप को सुनना पड़ा, लेकिन सब बच्चों को बाबा समझ करके, बच्चे कोई बात नहीं, इनका ये पार्ट है, ये परवश है, इनको पता नहीं है किसका कार्य है, और अपनी स्थिति को बहुत अचल अडोल एक रस बना लिया। तो ब्रह्मा बाबा की जीवन को जब हम सामने लाते हैं तो बाबा के समान निंदा स्तुति, जय पराजय, मान अपमान, दुख सुख, कैसे बाबा सबके बीच में समान स्थिति में रहे, कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, अभी तो सब बाबा के बच्चों के पास सब प्रकार के साधन हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का त्यागमय जीवन, उनकी तपस्या, उनकी सेवाएं हम सबके सामने हैं। कैसा कमरा था, कैसी कुटिया थी, अभी तो सब लेटेस्ट हो गई, जब मैं ही आया था तभी भी वो टाट की पत्तों की घास की झोपड़ी थी और बहुत छोटा सा रूम था, बाथरूम भी बाहर था। ऐसे उस तपस्वी ने त्याग और तपस्या की मूरत बनकर इतने बड़े यज्ञ की स्थापना की और सबको बच्चों को प्यार की पालना देते हुए स्वराज्य अधिकारी स्थिति में रहे। हम बच्चों को बाबा कहते हैं रोज दरबार लगाओ, बाबा ने तो दरबार लगाई और एक एक कर्मचारी का रोज हालचाल पूछते रहे। मैं कह रहा था कि हम कितनी बार दरबार लगाते हैं, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से और अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों से कितना बात करते हैं, कितना ये मेरे कंट्रोल में है, कितना मेरे अधिकार में है, अधीनता कहाँ तक है, पराधीनता कहाँ तक है और अधिकार की स्टेज कितनी बनी है। तो एक बहुत सुंदर आईना हम सब के सामने ब्रह्मा बाबा की जीवन है। ज्ञान भी एक बहुत बड़ा आईना देता है। जैसे आज बाबा ने हम सब के आगे ब्राह्मण जीवन की बहुत सुंदर परिभाषा बताते हुए हमारे इस ब्राह्मण जन्म का बर्थ राइट क्या है और उस बर्थ राइट के नशे में रहने से कैसे लक्ष्य के अनुसार लक्षण आते जाते हैं, ज्ञान का एक बहुत सुंदर दर्पण दिया। अगर हम सभी इस ज्ञान के दर्पण को अपने सामने रखते हैं तो ये ज्ञान दर्पण भी हमारी स्टेज को बताता है कि मैं किस स्टेज तक पहुंचा हूं। बाबा बहुत रमणीकता से छोटी छोटी बातों पर ध्यान खिंचवा देते हैं। चेक किया होगा बाबा ने कितना रमणीकता से, बच्चे तुम्हारे लिए शोभता नहीं है, कोई छोटी छोटी बातें अगर उलझन में ले आती हैं तो कितना रमणीकता से बाबा ने कहा कि शेर अगर चींटी से घबरा जाए तो उसको शेर कैसे कहेंगे। चींटी जितनी छोटी छोटी बातें हमारे संगठन में होती हैं, लेकिन कई बार हम उनको सुन करके सोच करके उसको बड़ा रूप बना देते हैं और उन बातों को सोच सोच करके उसमें उलझते रहते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कई बार हम खुद भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझा देते हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले एक स्थान पर गया था, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से बहुत आगे। इतना बड़ा सिटी है, करीब 25-30 किलोमीटर में फैला हुआ, और मैं जिस स्थान पर गया इतना छोटा सा स्थान था, 50 स्टूडेंट थे सिर्फ। गया अचानक था, कुछ पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, बाबा मुझे क्यों भेज रहा है। मैंने देखा छोटी छोटी बातों के कारण टीचर से स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक ही स्थान पर एक का सेंटर चल रहा तो दूसरे ने उसी बाजू में दूसरा स्थान खोल दिया है। समझाने पर भी समझने का प्रयास नहीं है। बाबा की सेवा का बड़ा अच्छा उमंग है सभी के अंदर। बहुत से प्रोग्राम्स रखती हैं बहनें, कोई भाई आते हैं, कोई जाते हैं बड़े। अभी कॉलेज में प्रोग्राम है, अभी ब्लॉक डेवलपमेंट में प्रोग्राम है, अभी केबल में प्रोग्राम, इतने सारे मेरे प्रोग्राम्स रखे थे। सेवाएं करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अथक हैं, उनके अथकपन को देख करके धन्य धन्य कहता हूं। बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन बाबा जो आज एक शब्द बोला, सुना है, ध्यान दिया होगा, वो बाप के खाते में गया या पाप के खाते में, बड़ा गहरा शब्द था। अगर कहीं पर भी जरा भी कोई सेवा के साथ साथ डिससर्विस हो रही है और हम उसका त्याग नहीं कर सकते, मेरा 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 कह करके कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाते, आपस में तकरार हो जाती है, मैं समझता हूँ वो सब सेवाएं पानी में फिर जाती हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बाबा कहता है ऐसी सेवाएं त्याग दो, नहीं चाहिए। बाबा के रजिस्टर में वो सेवाएं रिकॉर्ड नहीं होती। अगर कोई स्थिति बिगाड़ करके और मतभेद में आकर के किसी भी स्थान पर सेवाएं कर रहा है और स्पष्ट दिखाई देती हैं, एक बाबा को हम सब प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, और बाबा कहता है मुझे यही शब्द प्यारा है, आज वरदान में क्या कहा, एक शब्द मुझे प्यारा है, बस चाहे एक बल एक भरोसा है, चाहे एक नामी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे एकता है, चाहे एक मत है, चाहे आज कहा एक वृत्ता है, एक शब्द है सिर्फ। अगर एक से दो हो गए, दूजा आ गया बीच में, तो बाबा के वरदान उसे नहीं मिलते। हम सबको बाबा वरदानों से भरपूर करने के लिए आया है, और इतनी सहज से सहज युक्तियां, सहज से सहज विधियां बता रहा है, फिर भी पता नहीं कौन सी छाया है। मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, शायद अंतिम समय में हिसाब किताब चुकतू करने के ये खेल चल रहे हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची पालना, इतनी ऊंची शिक्षाएं, और उसके बीच में छोटी छोटी चींटी जैसी बातें शोभा नहीं देती, बाबा कहता, फिर भी दिखाई देती है, रोज सुनने को मिलता है, कभी कहीं। मेरे पास तो रोज 5-10 ईमेल आ जाते हैं ऐसे। बाबा क्या करें, दादियां क्या करें, बड़े क्या करेंगे। अगर कोई भी आत्माएं जो निमित्त हैं, जिस स्थान पर निमित्त हैं, उनकी वृत्तियों में एक त्याग आ जाए, एक तपस्या आ जाए, एक भावना आ जाए बेहद की, हदें निकल जाएं, तो सब समस्याओं का बहुत सहज समाधान हो सकता है। और ये रियलाइजेशन पता नहीं कब होगी, अचानक कैसे होगी, शायद अंतिम समय में जब विनाश एकदम सिर पर आ जाएगा, बम छूटने लगेंगे, उस समय अंदर का वैराग्य आए और परिवर्तन हो जाए। अभी तक तो कोई आसार दिखाई नहीं देते। हम सब बाबा के बच्चों को इस वर्ष ये तपस्या की बहुत सुंदर भट्टियां मिल रही हैं। हर ग्रुप की भट्टी है इस बार मधुबन के अंदर, कुमारों की भी है, कुमारियों की भी है, माताओं की भी है, युगलों की भी है, टीचर्स की भी है, समर्पित होने वाली कुमारियों की भी है, समर्पित भाइयों की भी है, आमंत्रित भाइयों की भी है, 7-8-10 ग्रुप बने हुए हैं। और मधुबन में भी भट्टियां 10-12 ग्रुप में सितंबर अक्टूबर तक चलेंगी। अब ऐसी कुछ तपस्या हम सब करें जो बाबा की ये आस पूरी की जा सके। जो बाबा कहता है, मैं ऐसे बच्चों से, दिल वाले बच्चों से दिलाराम मिलेगा, तो मिलने के लिए जब बाबा आए तो सभी बच्चों को देखे कि हर स्थान, हर सेवा स्थान और हर ब्राह्मण आत्मा सचमुच संगम युक्त के बर्थ राइट से संपन्न है। ईश्वरीय सुख, अतीन्द्रिय सुख, बाप दादा की गोदी का झूला कितना सुंदर हम सबको मिला है। हम ब्राह्मण आत्माएं कितना इस झूले में झूलती हैं, बाबा की गोदी में रहने वाला, जैसे कोई बच्चा माँ बाप की गोदी में बैठा हुआ हो, क्या चिंता है, क्या फिक्र है, क्या चाहिए, गोदी का झूला है। संगम युग पर बाबा की अलौकिक गोद हम सबको मिली है। सचमुच अगर देखें इस ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन के अंदर अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। और आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तुलना भविष्य देवताई जीवन से ब्राह्मण जीवन की है। उनका श्रृंगार दासियां करेंगी, वो तो स्थूल जेवरों से श्रृंगार होंगे, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं का श्रृंगार तो स्वयं ज्ञान सागर बाबा कर रहा है, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। उन्हें तो स्थूल रूप में ताज मिलेगा, आप बच्चों को तो साक्षी दृष्टा स्थिति का, दिल तख्त का तख्त भी मिला है, और जुम्मेवारियों के साथ साथ पवित्रता का, लाइट का ताज भी मिला है, और आत्मस्मृति का तिलक भी मिला है। उनको तो एक गोल्डन स्पून होगा, सब संपत्ति होगी, और आप बच्चों को तो हीरे जैसी जीवन मिल गई है। सर्व प्राप्तियां इस संगम युग पर बाबा ने एक एक बच्चे को कराई है। कोई भी इस ब्राह्मण जीवन में ये कहे कि मेरे पास ये प्राप्ति नहीं है, कोई शक्ति की, कोई गुणों की, और स्थूल में भी बाबा ने किसी को कोई चीज की कमी नहीं दी है। मुझे तो लगता है कि किसी भी चीज का अगर कोई संकल्प भी उठता है और वो चीज आ जाती है तो कहता हूं बाबा बस अब नहीं चाहिए, सब हाजिर हो जाता है। संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्माएं अगर शुद्ध संकल्पों में रमण करती हैं, कोई स्वार्थ के संकल्प, पर्सनल के संकल्प नहीं है, तो बाबा अपने आप सब कुछ संपन्नता का अनुभव कराता है, सब कुछ भरपूर करता है, एक चीज की स्थूल में भी कोई कमी नहीं रखता। सूक्ष्म शक्तियों से हम बच्चों को तो भरपूर कर ही रहा है, और उनसे हम सब मालामाल जीवन का अनुभव करते हैं। हेल्थ के लिए देखो मन कितना स्वस्थ है, कोई भी प्रकार की मानसिक जब टेंशन ही नहीं है, जब किसी भी प्रकार का मन के अंदर हलचल ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है, जब पक्का है सब अच्छे से अच्छा हो रहा है, सब अच्छे से अच्छा होना है, तो हलचल करने की भी क्या आवश्यकता है। तो मन की स्थिति को बाबा ने इतना सुंदर, इतना अच्छा बना दिया है, जो अचल है, अडोल है, स्थिर है, एक रस है, बिल्कुल निरोगी है, कोई रोग इस मन नहीं है। पांच विकार और पांच प्रकृति के तत्व क्या करेंगे अगर आत्मा अपनी उस समान की स्थिति में स्थित रहती है। तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, अभी भक्त नहीं हैं। बाबा ने कहा बगुला भगत नहीं बनो, मांगने वाले नहीं, अंदर एक बाहर से दूसरे नहीं, लेकिन हम सब बाबा के ज्ञानी तु आत्माएं हैं। और बहुत सुंदर मिसाल देकर के बाबा ने सुनाया है कि जो आदि काल के भक्त हैं उनकी भक्ति पूरी हो जाएगी। ये भक्ति का जो संस्कार है, अधीनता, परवश स्थिति, मांगना, चिल्लाना, पुकारना, आदि काल के भक्तों के अंदर ये संस्कार नहीं होगा। वो ज्ञानी तो आत्मा है, वो बाबा से सब प्राप्तियां कर रही है, उसको कुछ भी पुकारने मांगने की जरूरत नहीं है। हम सब ऐसा लक्ष्य रख करके सिर्फ अपने संस्कारों की अधीनता से मुक्त हो जाएं, ये सबसे बड़ी अधीनता है, और इसी को बाबा ने आज सबसे बड़ा अज्ञान अंधकार कहा है। जब अज्ञान अंधकार है तो रोशनी नहीं है, इसलिए बहुत सुंदर कॉन्ट्रास्ट था, जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं, जहां रात है वहां दिन नहीं। अगर दिन है तो रात क्यों? अगर हम सब बाबा के बच्चे एकदम अधिकारी स्थिति में रहते हैं और इसका अभ्यास करते हैं बार बार कि मैं आत्मा बालक सो मालिक हूं, इन कर्म इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण अधिकार है, तो अधिकारी स्थिति के आधार से अधीनता समाप्त हो जाती है, पिछले संस्कार अपने आप मर्ज हो जाते हैं, मेहनत करने की, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं अभी तक बहुत युद्ध में समय गंवाती हैं। अब युद्ध का कारण क्या है? अधिकतर अगर देखा जाए तो युद्ध का कारण है बहुत दिल के प्यार की, मोहब्बत की कमी। अगर बाबा से हम सबका बहुत सच्चे दिल का प्यार है और उस प्यार में आत्मा बार बार समा जाती है, एहसान मानती है बाबा का, बाबा आपने क्या नहीं दिया है, क्या बनाया है, कितना ऊंचा बनाया है, किस पोस्ट पर रखा है मुझे, अपने से भी आगे बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ अगर ये भान नेचुरल रहता है कि बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया है, भविष्य तो परछाई है, भविष्य तो अच्छा होना ही है। एक स्लोगन में पढ़ रहा था कि बीतती हुई बातें एक इतिहास बन जाती हैं, आने वाला कल रहस्य है, लेकिन वर्तमान तो उपहार मिला हुआ है, गिफ्ट है। हम इस बीती हुई बातों का चिंतन करके, पास्ट की बातें जो हो गई, कुछ भी कारण बने, अच्छी हुई हैं तो बाबा कहते उनको याद करके और अच्छे बन जाओ, लेकिन जो ऐसी नेगेटिविटी वाली बातें हैं, जो हमारे किसी भी अधीनता वाली बातें हैं, वो बार बार अगर याद आती हैं, कई बार हम उनको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। एक भाई आया था, अभी अभी की बात है, एक से डिस्टर्ब हो गया, बड़ी बहन से ही, और कहता है मैंने इस बहन के लिए इतना सब कुछ किया, मैंने उसको सेंटर बना के दिया, मैंने उसको इतना आगे बढ़ाया, मैंने ये किया, और आज मेरे साथ वो ऐसा कर रही है। बस वो बार बार सोच करके, कितना भी कहता मैं फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन लगता ही नहीं है। जब योग में बैठता हूं, जब कहीं शांति में बैठता हूं, वो सारी बातें घटनाएं मुझे सामने आ जाती, मैंने इसके साथ क्या किया, कितना उपकार किया, और ये मेरे साथ क्या कर रही है, कैसे इसको भूलूं। और उसको सोच सोच करके कई बार उसको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, योग नहीं लगता, हार्ट के अंदर तकलीफ हो गई, बीपी बढ़ जाता है। कोई विधि जो उसको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दे। कहता है ज्ञान मुझे बहुत है, मैं सब रिवाइज कर लेता हूं, ड्रामा है, कल्याणकारी है, हिसाब किताब है, पूरा हो रहा है, सब पूरा हो जाएगा, सब अच्छा होगा, बाबा बैठा है, सब ज्ञान है मेरे पास, लेकिन ब्रेक नहीं लगते, क्या किया जाए। बहुत समझाने का प्रयास किया, हमने कहा अभी आपके लिए मुझे शायद योग करना पड़ेगा, क्या करेंगे। हैं ज्ञानी तू आत्माएं, लेकिन जब परीक्षा आ जाती है किसी भी प्रकार की, बहुत मुश्किल से ब्रेक लगती है। देखना अपने आप को, उस समय धैर्यता का गुण कहां जाता है, उस समय सद्विवेक कहां जाता है, उस समय नेगेटिव को पॉजिटिव हम बना पाते हैं या नहीं। बाबा हम बच्चों को वो शक्ति देता है, वो समर्थ्य देता है। कहता है स्मृति दिवस तो बहुत मना लिया, अभी समर्थ्य दिवस मनाओ, गीत तो बहुत गाए, अभी बाबा तुम्हारे गीत गाए, ऐसा कुछ करो। तो हम सबके गीत बाबा तब गाए जब हम कुछ बाबा जो कह रहा है वो करके दिखाएं, ऐसे समर्थ बने जैसे ब्रह्मा बाबा बना। बाबा के सामने कितने पेपर आए होंगे, दादियों के सामने कितने आए हैं, मेरे सामने तो दादियां हैं, दादी जानकी जी को हम देखते हैं, बड़ी दादी के साथ मैंने बहुत नज़दीक से पार्ट प्ले किया, अभी दादी जी आ रहे हैं, घड़ी घड़ी हर बात में, हर नेगेटिव को जो बात आती है सेकेंड में फुल स्टॉप, सब अच्छा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितनी शक्ति है, कितनी समर्थ्य है, मैं कहता हूँ, जो कभी भी उस बात को वर्णन और चिंतन में नहीं लाती, क्योंकि कोई भी बात बड़ा रूप तब लेती है जब 10 लोगों के कान तक पहुंच जाती है। अगर सचमुच ब्रेक लगानी है तो सबसे पहली परहेज ये करनी होगी कि हम उसका वर्णन करना बंद कर दें। दूसरों को सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं से लीकेज बढ़ती जाएगी और शक्तियां क्षीण होती जाएंगी। हम सबको शक्तियां बाबा दे रहा है, सकाश भी दे रहा है, मदद कर रहा है, छत्र छाया है उसकी, बड़ों की दुआओं की भी छत्र छाया है, ज्ञान रत्नों की भी छत्र छाया है, श्रीमत पर चले हैं उस श्रीमत भी छत्र छाया है, पवित्र जीवन है पवित्रता की भी छत्र छाया है। अगर विचार करके देखो कितने प्रकार की रंग बिरंगी छतरी हम सबको मिली है, और उस नीचे उसके हम अगर हम रहते हैं तो उस छतरी के नीचे रहने से सब प्रकार की समस्याएं परिवर्तित हो जाती, समाप्त हो जाती, कहीं से भी माया की आंच नहीं आ सकती, कोई कितना भी कुछ करे और कहे, लेकिन ऐसी शक्ति केवल बाबा की छत्री में रहने से प्राप्त हो सकती है। बाबा बैठा है, कभी भी कोई बात आती है दादी से पूछो, बाबा बैठा है। हलचल हुई दादी, कुछ हुआ, बाबा बैठा है, ठीक कर लेगा। इतना अंदर का विश्वास, अंदर का निश्चय है, बाबा बैठा है। हमेशा अंदर से उनके यही निकलता है, सब ठीक हो जाएगा। एक बार बाबा बड़े मुस्कुराते हुए मधुबन निवासियों से मिल रहे थे, और जो भी नीचे ऊपर बातें होती हैं, कई बार कई बातें सामने होती हैं संगठन में, कभी सरकार की होती हैं, कभी परिवार की होती हैं, तो बाबा को बहुत सारी बातें सुना रहे थे। पहले तो बाबा ने कहा, अच्छा तुम टाइप करना बंद कर दो, तुम माइक बंद कर दो, तुम ये सब बंद करो। सबको बंद करा दिया। मैं टाइप कर रहा था, मुझे कहा तुम बंद करो टाइप करना, सीधा ही बोला टाइप करना बंद करो। पता नहीं बाबा को क्या बोलना है, बोल करके मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चों ने बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन जो आने वाला सवेरा है उसको कौन रोक पाया है? क्या कोई चीज रोक सकती है? है विश्वास, है निश्चय, बातें तो आएंगी ही, पहाड़ जैसी आएंगी, तोड़ो मत पहाड़ को। अगर पहाड़ को तोड़ने लगेंगे, पहाड़ के लिए सोचने लगेंगे, तो बहुत बड़ी बात आ गई, तो कभी भी आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। या तो इतनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ जैसे उड़ करके ऊपर से पार हो गए, पहाड़ नीचे रह गया, छोटा हो गया और मैं ऊपर से चला गया, या तो एक ऐसा पॉजिटिव दृष्टिकोण बना करके इधर से इधर निकल जाओ, रास्ता ले लो, क्रॉस कर लो व्यर्थ संकल्पों के, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा होता है क्या, कभी सोचा ही नहीं था, यहां भी ऐसा हो गया। अगर इस प्रकार के प्रश्नात्मक चिन्ह उठ गए तो पहाड़ बड़ा होता जाएगा, तोड़ने लगेंगे और थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। बाबा हम सबको समर्थ स्थिति में रहने की शिक्षाएं दे रहा है, समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो, और हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव में चेंज करो। कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, पेपर हाल में बैठे हैं, आएगा, पार हो जाएगा, पास होने वाला, पास करने वाला हमारा साथी है। कलप कलप मैंने पास किया है, मैं बाबा का विजयी रतन हूं। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरा बर्थ राइट है। अगर इस प्रकार के संकल्प निश्चय के किए जाते, संकल्प को इमर्ज रखते हैं, मर्ज नहीं कर दें, कई बार वो बातें मर्ज रहती हैं, इमर्ज नहीं होती। नशा जो बाबा ने आज दिलाया, बार बार उसको इमर्ज करो, उसकी स्मृति स्वरूप बन जाओ। अगर उस निश्चय और नशे में हम रहते हैं तो बहुत सुंदर स्थिति बन जाती है, और उस स्थिति के सामने कोई भी परिस्थिति आए वो पार हो जाती। स्व स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जो परिस्थितियां अपने आप परिवर्तित हो जाएं। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाबा के 77 के महावाक्य हैं, लेकिन आज की इस परिदृश्य के अंदर अगर हम सब इनको प्रैक्टिकल स्वरूप दे दें, तो मैं समझता हूँ बाबा की चाहनाएं जो हैं, बाबा जो हम बच्चों में उम्मीद रखता है, आशाएं रखता है, वो हम सब पूरी कर सकेंगे। ओम शांति।